आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, प्रस्तुत हैं शनिवार 10 जनवरी 2026 के मुख्य समाचार स्वाति शर्मा के साथ। विक्टोरिया राज्य में अग्निशमन दल कई बेकाबू बुश फायर से जूझ रहे हैं, जिसमें राज्य भर में घरों और स्कूलों सहित 100 से अधिक ढांचे नष्ट हो चुके हैं। 3,00,000 हेक्टेयर से अधिक बुश लैंड जलने के बाद 18 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया गया है। ये आगे राज्य में 6 साल पहले हुई तथाकथित ब्लैक समर के बाद से सबसे भीषण मानी जा रही है। न्यू साउथ वेल्स में भी अग्निशमन दल कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जहां 40 से अधिक आगें जल रही हैं, जिनमें से 4 पर शनिवार सुबह तक काबू नहीं पाया गया था। राज्य के मध्य और दक्षिण पूर्व के बड़े हिस्से में अत्यधिक और गंभीर हीट वेव चेतावनियां लागू हैं और सिडनी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम की चरम सीमा की स्थिति के चलते न्यू साउथ वेल्स के बड़े हिस्सों में शनिवार के लिए आग जलने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी है। फार नॉर्थ क्वींसलैंड के तट के पास एक ट्रॉपिकल लो, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कोजी कहा गया है, कि आज शनिवार को कैटेगरी 1 साइक्लोन में बदलने की संभावना बताई गई है। ब्यूरो ऑफ मेटीरियोलॉजी ने कुकटाउन से मैके तक और नेटल डाउन्स तक के क्षेत्रों के लिए गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है, जिसमें तेज हवाओं और भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिससे खतरनाक और जानलेवा फ्लैश बाढ़ आ सकती है। न्यूज कॉर्प द्वारा शनिवार सुबह प्रकाशित एक पोल के अनुसार मतदाता प्रमुख पार्टियों से दूर होते दिख रहे हैं और पॉलिन हैंसन की वन नेशन के समर्थन में उछाल आया है। 1,608 मतदाताओं पर आधारित यह पोल दिखाता है कि वन नेशन का समर्थन बढ़कर 21% हो गया है। सरकार के समर्थन में 6 अंकों की गिरावट आकर यह 29% रह गया, जबकि कोअलिशन का समर्थन 7 अंकों की गिरावट के साथ 25% पर पहुंच गया। अब एक नजर विश्व समाचारों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वैश्विक तेल अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के एक सप्ताह बाद उसके तेल उद्योग पर अमेरिकी कब्जे पर चर्चा की गई। इन वार्ताओं में शेवरन, एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी प्रमुख कंपनियां और साथ ही स्वतंत्र और प्राइवेट इक्विटी समर्थित फर्में शामिल थीं। 2 दिनों में फेडरल इमिग्रेशन अफसरों से जुड़ी दूसरी गोलीबारी के बाद अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है। साथ ही गोलीबारी कैसे और क्यों हुई, इस पर राज्य और फेडरल अधिकारियों के बीच भी मतभेद गहरे हो रहे हैं। मिनेसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE एजेंट्स द्वारा 37 वर्षीय महिला को घातक रूप से गोली मारे जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए, जहां स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने घटना के बारे में अलग अलग विवरण दिए। अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन में एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसमें फेडरल अधिकारियों का कहना है कि चालक ने एजेंटों को कुचलने की कोशिश की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वे आर्थिक परिस्थितियों को लेकर देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के सामने पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने कड़े दमन के संकेत दिए हैं। ईरानी सरकार के देश में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स बंद करने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। और अब बात भारत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला से कच्चे तेल की आपूर्ति दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका से हरी झंडी पाने की कोशिश कर रही है। कंपनी 2025 के शुरुआती 4 महीनों में US लाइसेंसेस के तहत वेनेजुएला से प्रतिदिन लगभग 63,000 बैरल कच्चा तेल यानी क्रूड मंगा चुकी है। रॉयटर्स के खबर के मुताबिक अब रिलायंस इस सिलसिले में US स्टेट और ट्रेजरी विभागों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि नॉन US खरीदारों को खरीद की अनुमति मिल सके। गुजरात में स्थित कंपनी की रिफाइनरियां भारी किस्म के वेनेजुएला क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम है और मौजूदा हालात में इसे रशिया से तेल आयात पर बढ़ते पश्चिमी दबाव के बीच एक संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।